मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 5 सितंबर 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी के साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं अमिता सिंह, आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। अशोक कुमार शर्मा, आप जोधपुर राजस्थान से हैं। अवधेश कुमार, आप सऊदी अरब से हैं। शीलवंत कुमार, आप छपरा बिहार से हैं। और रामकृष्ण नामदेव चंदन खेड़े, आप यवतमाल से हैं। तो अमिता, अशोक, अवधेश, शीलवंत और रामकृष्ण, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक साथ दो अवसर हैं, ये एक संयोग है, और ये अवसर हैं गणेश चतुर्थी का और शिक्षक दिवस का। तो गणेश चतुर्थी पर मैं आप सभी को बहुत बहुत इस पावन और शुभ उत्सव कह लीजिए, शुभ अवसर कह लीजिए, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूं या बधाई दूं, जरा सा मैं थोड़े से द्वंद में हूं, लेकिन आप सबके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में मुझे बधाइयां दी हैं, मेरे प्रति शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और साथ ही मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाइयां भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बेहतर होगा कि हम शिक्षक दिवस और गणेश चतुर्थी को जोड़ करके कुछ बातें देखें। तो यह मैं जब लाइफ मैनेजमेंट लास्ट में आऊंगा तो उस तरह की कुछ बातें हम लोग करेंगे। दोस्तों, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। मित्रों, कल के AIR न्यूज पर बातचीत करने के लिए जो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो G20 है, लेकिन G20 के साथ ही मैं एक दूसरे मुद्दे पर आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूं। और यह जो मुद्दा है स्पेशली सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मित्रों, मुद्दा यह है कि खासकर जो हमारा प्री एग्जाम होता है, इस प्री एग्जाम की जो भूल भुलैया है, इसका जो एक मनोवैज्ञानिक चैलेंज है, साइकोलॉजिकल जो चैलेंज है, मुझे लगता है कि उसे आप सबको बहुत गहराई से, बहुत संवेदनशीलता से और बहुत जिम्मेदारी के साथ समझना चाहिए। और यह बात मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। मित्रों, इससे पहले भी शायद मैंने एक दो बार आप लोगों के सामने इस बात की चर्चा की है कि मैं जब सिविल सर्विस एग्जाम में बैठ रहा था तो मुझे जो सबसे ज्यादा डर लगता था वो प्री एग्जाम में ही लगता था। और हम लोग के समय में तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना पड़ता था प्री के लिए ही, जो अब CSAT की जगह एक सब्जेक्ट था, और मैंने गलती से हिस्ट्री ले ली थी। उसका कारण यह है मित्रों कि प्री एग्जाम के लिए उस समय तो ये बात ज्यादा थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है, आपको कंटेंट की बहुत जरूरत होती है। मतलब आपको फैक्ट्स मालूम होने चाहिए। फैक्ट्स मालूम होने चाहिए का मतलब है कि जो आपके पढ़ने का जो नजरिया होना चाहिए वो थोड़ा इस तरीके का होना चाहिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और यहां तक कि जो थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट भी हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ें, कुछ को रट भी लें, रटने के बाद फिर उन्हें दोहराएं भी, और इस तरीके से पढ़ें और रटें कि उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रह जाए। क्योंकि अगर कंफ्यूजन रहा तो मान करके चलिए कि प्री एग्जाम में आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को गलत करके आएंगे, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज ही तो करना चाहते हैं और यही एक इस तरह के दिमाग को चेक करना चाहते हैं। मित्रों, मेरे साथ ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है या मेरे पढ़ने की कुछ टेक्निक में इस तरह की खामियां रही हैं कि जो कंटेंट होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, वो मेरे दिमाग में आभास के रूप में रहते हैं, एक्चुअल फैक्ट्स के रूप में नहीं रह पाते। मैं एक फ्राइडे की घटना की चर्चा करना चाहूंगा जिसकी तरफ कई दोस्तों ने ईमेल के जरिए ध्यान भी दिलाया है। हुआ ही मित्रों कि फ्राइडे को के मॉर्निंग में जब मैंने अखबार में ये पढ़ा कि भारत ब्रिक्स की तैयारी कर रहा है और आपको मालूम है कि नेक्स्ट मंथ में ब्रिक्स की जो बैठक है वो भारत में होने जा रही है, तो पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैं ब्रिक्स के बारे में पढ़ने लगा। ब्रिक्स क्या है, कैसा है, थोड़ी बहुत तो जानकारी रहती है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी सी और इसे समझ लेना चाहिए क्योंकि भारत में बैठक होने जा रही है तो हो सकता है कुछ आर्टिकल्स आने शुरू हो जाएं तो उनको आप अच्छे से समझ सकें। इसके लिए जरूरी है कि उसकी बैकग्राउंड आपके पास हो। तो मित्रों मैंने ब्रिक्स के बारे में ठीक ठाक मतलब पढ़ाई कर ली। हुआ क्या कि फिर मैं अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग की तैयारी करने लगा और उस न्यूज में आप देख रहे थे कि इसमें था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो वियतनाम और चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। मित्रों जब तक मैंने न्यूज सुना और मैं जब अपने रिकॉर्डिंग रूम में एंटर कर रहा था तब तक मेरे दिमाग में किसी तरह का कोई भ्रम नहीं था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीन की यात्रा में G20 की बैठक में जा रहे हैं। तब तक मेरे दिमाग में कोई भ्रम नहीं था, कोई गलतफहमी नहीं थी। अब होता क्या है, मैं आपको दिमाग की बात बता रहा हूं और अपने ये सच पूछे तो अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मेरा ये जो अनुभव है वो ज्यादातर कमोवेश रूप में आप सब में भी थोड़ा 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 किसी में ज्यादा किसी में कम लागू होता होगा। तो मैं उस सतर्कता की तरफ आपका इशारा भर कर रहा हूं ताकि आप इन चीजों पर अपनी कमांड अभी से बनाकर रख सकें। उस समय मुझे तो किसी की गाइडेंस नहीं मिली थी कि मैं उन चीजों को सुधार पाता, बस जूझ रहा था और आप सबकी शुभकामनाएं थी कि मामला ठीक ठाक निपट भी गया, अदरवाइज हो सकता था कि मैं ही निपट चुका होता। खैर तो मित्रों मेरे पास जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूं तो कोई लिखित में उस तरह से डिटेल्स होती नहीं है, पॉइंट्स पॉइंट्स भले ही हों और पॉइंट्स होते भी हैं और उन्हीं को लेकर के फिर मैं एलोबरेट करता हूं। तो हुआ ये मित्रों कि जब मैं रिकॉर्डिंग करने लगा तो वियतनाम के बारे में मैंने थोड़ी सी बात की और जब प्राइम मिनिस्टर के चाइना टूर की बात आई तो बड़े मजेदार तरीके से अनजाने में ही, जानते हुए मतलब ये मालूम था कि G20 की बैठक में जा रहे हैं वो, अनजाने में ही ब्रिक्स निकल गया। ऐसा नहीं कि ब्रिक्स निकलने के बाद मुझे तुरंत ये पता लगा कि कुछ गलत हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। फिर आप देखिए कि सूत्र क्या पकड़ा कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, है ना। तो पड़ोसी देश और वियतनाम और दक्षिण चीन सागर और ब्रिक्स पांच बड़े इस तरह के समूह के देश है, उस पर उसकी एनालिसिस करने के बाद मैंने शायद उसमें यही बात बताई कि इसलिए ये जो बैठक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर हम देखते हैं कि क्या आउटकम होते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे। मित्रों बात खत्म हो गई और सच पूछे ईमानदारी के साथ मैं बता रहा हूं कि रिकॉर्डिंग करने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ गलत रिकॉर्डिंग करके आया हूं, राइट। ये तो बाद में काफी समय बाद जाकर के मुझे लगा, तब तक ये जा चुका था नेट में और काफी देरी हो चुकी थी, मुझे अचानक लगा कि यार ये तो ब्रिक्स तो भारत में और नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ब्रिक्स के बारे में ही उसको बोल दिया है, फिर तुरंत आया कि नहीं ब्रिक्स के बारे में ही उसमें बोला गया है। मित्रों अब कुछ नहीं किया जा सकता था, चलिए हो गया। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने उसे करेक्ट भी कर लिया, उस तरीके से आप लोगों ने लिया भी, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरा ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मित्रों यहां मैं जो सबसे बड़ी जो बात आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं वो ये कि देखिए कि आपका जो दिमाग है वो किस तरीके से काम करता है और ये सबका दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है। मैंने अभी अपने दिमाग की बात की, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगर सुबह मैंने ब्रिक्स के बारे में अलग से नहीं पढ़ा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं G20 के बारे में चर्चा करके आपसे बात खत्म कर देता। लेकिन वो जो ब्रिक्स का असर इतना ज्यादा रहा, जिसको आप कह लीजिए कि बोलते समय जरा सी टंग स्लिप हो जाना या दिमाग का थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पर चले जाना, उस ब्रिक्स का असर इतना ज्यादा था कि वो सारी चीजों को उसने गलत तरीके से पेश कर दिया। मित्रों मैं जानता हूं कि ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, हो जाता है का मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को इन सब चीजों से बचाने की कोशिश करें। तो अब मैंने अपने लिए ये फैसला किया कि नहीं, इस तरह के जो प्रोमिनेंट टॉपिक होते हैं उनकी तैयारी, उनके बारे में अब रिकॉर्डिंग से पहले पढ़ा ही न जाए, जो कुछ भी पढ़ना है वो रिकॉर्डिंग के बाद में पढ़ा जाए। लेकिन उसमें दिक्कत एक ये भी आती है मित्रों की, जब आप अखबार पढ़ते हैं तो उसमें कई कई चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो लेकिन कोशिश होगी कि ऐसा न हो। तो मित्रों, मैं खासकर प्री के प्रिपरेशन के बारे में आप लोगों को ये बताने जा रहा था कि आप सब इस घटना को ध्यान में रखते हुए अपने अपने जो दिमाग की जो कार्य प्रणाली है, उसकी जो प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें, और अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी पढ़ाई को रूप दें कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। इसलिए देखा होगा कि अगर आपने मेरी किताब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो पढ़ी हो, या इवन कि आप आईएएस कैसे बनेंगे किताब भी आपने पढ़ी होगी, तो मैंने स्पेशली इसीलिए कहा है कि आप एक दिन में एक ही टॉपिक को पढ़िए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अदरवाइज वो ओवरलैपिंग होने के बाद हमारी उस क्षमता को कमजोर कर देती है, धुंधली कर देती है, जो सिविल सर्विस में जरूरी है। ये मतलब ये मेरी कमजोरी है जो मेरे साथ होती है, लेकिन मित्रों ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे इस अनुभव से आप लोग कम से कम यह सीख लेते हुए और इस तरह की चीजों से अपने को यथासंभव बचाने की कोशिश करें। तो मित्रों, अब मैं आता हूं पहली ही न्यूज पर जो G20 से ही संबंधित न्यूज है। देखिए, G20 का जो सम्मेलन हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है दो दृष्टियों से। पहला तो ये है दोस्तों कि ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट का सम्मेलन था, मतलब ये जो सम्मेलन, इस सम्मेलन में आप देखिए कि हमारे यहां से कौन गए हैं, हमारे यहां से प्राइम मिनिस्टर गए हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो। अमेरिका से कौन आए हैं, अखबारों में आपने पढ़ा है कि ओबामा जी आए हैं। चीन में कौन है, आप देखें जिनपिंग साहब जो वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो आ रहे हैं, मतलब वो तो थे ही, वो तो होस्ट ही थे। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े लोग इसमें आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जो हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग होगी, सम्मेलन होगा, या हेड ऑफ द गवर्नमेंट का जो सम्मेलन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हो जाता है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें जो डिसीजंस होंगे आखिरी में, जो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे उसको हम बाद में देखेंगे। तो मित्रों, बहुत जरूरी होता है कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो आपको मालूम हो कि G20 क्या है, और इसलिए भी मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ बहुत बेसिक चीजें आपको, और ये नहीं कि इनका इसका पूरा इतिहास आपको रटना है या बड़ी बड़ी चीजें याद करनी है, छोटी छोटी चीजें भी याद करनी है, जो बहुत बेसिक चीजें हैं। बड़ी चीजें और बेसिक चीजों में फर्क होता है ना, बड़ी चीजें तो फिर आप ढेर सारी चीजें जोड़ करके उसको बड़ा बना दीजिए। बेसिक चीजें का मतलब है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए बहुत जरूरी हो। जैसे अगर मैं बेसिक चीजों के बारे में बात करूं, आपको एक उदाहरण ही देना चाहूं आपको G20 का, तो G20 का मतलब है जी स्टैंड फॉर ग्रुप ऑफ 20, मतलब 20 देशों का संगठन। ये है, ये 1999 में बना, 1999 में बना, और इसका जो उद्देश्य था जो इसमें शामिल हुए देश, तो ये था, देखिए पूरी दुनिया आर्थिक दृष्टि से अगर आप देखें तो तीन भागों में बटी हुई मानी जाती है। एक तो डेवलप्ड कंट्री है जो ऑलरेडी बहुत विकसित हो चुके हैं, एक डेवलपिंग कंट्री है भारत जैसे देश जो विकसित होने के करीब हैं या विकासशील प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और एक वो है जो अभी अनडेवलप्ड है, जो बहुत ही अभी पीछे हैं, जिनमें एक लंबा वक्त लगेगा। तो खासकर ये जो ग्रुप ऑफ 20 है, ये एक ऐसा फोरम है जहां पर कि जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं और जो विकासशील राष्ट्र हैं, वो आपस में आए बैठे, और जो ग्लोबल इशू है, ग्लोबल इकोनॉमी इशू, याद रखिए ये यहां कोई एनवायरमेंटल इशू नहीं है, यहां कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, स्पेशली इकोनॉमी इश्यू, ये इसका बेसिक है। ये विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में एक तरीके से आपस में बातचीत करेंगे, ये इसका उद्देश्य है। तो मित्रों, चूंकि G20 है तो इसमें 20 देश ही होंगे, स्पष्ट है। और एक बार फिर आप लिस्ट देख जाइए कि इन 20 देशों में कौन कौन है, और आपको पूरे देश रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट कौन से कंट्रीज इसमें आते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ब्रिक्स की बात की मित्रों, तो ब्रिक्स में आप इस रूप में भी इसको याद कर सकते हैं कि क्या ब्रिक्स का ब्राजील इसमें है, तो आपको लगेगा हाँ यार ब्राजील तो इसमें है। फिर आर का रसिया इसमें है, तो आपको लगेगा कि नहीं रसिया भी इसमें है, आई का इंडिया वो तो है ही, फिर आप सी का आप ढूंढेंगे चाइना, वो भी है ही है, वहां तो गए ही हैं। इसके बाद होगा कि एस का साउथ अफ्रीका, तो पता लगेगा साउथ अफ्रीका भी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक फैक्ट निकाल लिया कि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं वो सब के सब इसके भी सदस्य हैं, एक चीज पता लग गई। दूसरा, आप बड़े बड़े राष्ट्रों में जाएंगे तो बड़े बड़े में कौन है, अमेरिका यस इसका मेंबर है, फिर आप कहेंगे कि रशिया यस वो भी इसका मेंबर है, इंग्लैंड यस इंग्लैंड भी इसका मेंबर है, जर्मनी जी हां जर्मनी भी है, फ्रांस यस फ्रांस भी है, और इसके अतिरिक्त पूरा यूरोपियन यूनियन, सोचिए कि यूरोपियन यूनियन यूनियन तो 28 देशों का अब ग्रुप रह गया है, ये पूरे के पूरे 27-28 जो भी होंगे वो इसके सदस्य हैं। इसका मतलब है कि दुनिया की जो सबसे, सऊदी अरब जैसे देश भी हैं, और फिर लैटिन अमेरिका के जो बड़े मतलब डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो एक तरह से लैटिन अमेरिकी देशों का नेतृत्व करते हैं आर्थिक दृष्टि से, जैसे आप ब्राजील को देखेंगे वो इसका मेंबर है, मैक्सिको को देखेंगे वो इसका मेंबर है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। मैं देखिए इसके पीछे ये तर्क इसलिए दे रहा हूं कि जब आप देशों को नाम से याद करते हैं, ब्राजील मैक्सिको अर्जेंटीना, तब आपका याद रखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जब आप उन्हें इस तरीके से याद करते हैं कि अरे लैटिन अमेरिका से ये हैं जो वहां के बड़े प्रोमिनेंट इकोनॉमी लीडर हैं, अच्छा अफ्रीका से साउथ अफ्रीका है, यूरोपियन यूनियन, तो इस तब फिर वो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहता है, और इस तरीके से पढ़ने में आप यूं भी कह लीजिए कि आप अपने दिमाग को एक एनालिटिकल चीजें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मित्रों ये तो इसके कंट्रीज के इस ग्रुप के मेंबर हैं, ये कंट्रीज हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ चीजें, दो तीन चीजें आप और इसमें मालूम कर लीजिए, जैसे कि टोटल पॉपुलेशन का लगभग 2/3 इसमें कवर हो जाता है, 20 देशों में जो विश्व की जो पूरी आबादी है लगभग 65% कवर हो जाती है, इसमें कैनेडा भी है सोचे, और अमेरिका पॉपुलेटेड कंट्रीज है, रशिया है, भारत है, चाइना, आप देख रहे हैं ना कि बड़ी बड़ी जनसंख्या वाले देश तो ऑलरेडी शामिल हैं, तो 2/3 तो कवर हो ही जाएंगे। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है मित्रों की, जो पूरे विश्व का जो कुल उत्पादन है, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट आप कह लीजिए, उसका 85% सिर्फ यहां प्रोडक्शन होता है, 85। अब आप देखिए कि जो 65% पॉपुलेशन है वो कितना प्रोडक्ट कर रही है, 85%, यानी कि कंपैरेटिवली ये अच्छे देश है, और जो वर्ल्ड ट्रेड है उसका ये 80% सिर्फ इन्हीं देशों से हो रहा है, 80% 65% पॉपुलेशन 80% वर्ल्ड ट्रेड को हैंडल कर रही है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपके दिमाग में हो गए, जिसको मैं बेसिक्स कहूंगा, ये बेसिक्स फैक्ट्स हो गए, बस इन बेसिक्स फैक्ट्स को आप देख लीजिए। और अब आप देखेंगे कि जो अब आर्टिकल्स आएंगे, आप वाच कीजिएगा कि जो भी लोग लिखेंगे आर्टिकल्स, उसमें आपको इन्हीं बैकग्राउंड की एनालिसिस मिलेगी, जो बैकग्राउंड में जो तैयार, मतलब आप जिसको मैं कहता हूं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कि आपने कैनवास बना लिया है ना, अब आपको पेंटिंग करनी है तो आपने कैनवास बन तैयार कर लिया, अब उस पर आप पेंटिंग करेंगे, तो ये जो बेसिक चीजें पता लग गई तो आपका कैनवास बन गया, कैनवास बन गया, अब आप इस पर पेंटिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो चीजें अब आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को उसे समझने में अब ज्यादा आसानी होगी। तो मित्रों जैसा कि मैंने कहा कि ये देखिए ये इकोनॉमी फोरम है, तो आप ने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो वहां कहा है तो कौन से वाक्य उनकी हाईलाइट हुई है कि जो इसके देश हैं वो परस्पर स्पर्धी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन न करें। आपको मालूम होगा कि पिछले साल लगभग इसी वक्त चाइना ने अपनी मुद्रा का बहुत जबरदस्त रूप से अवमूल्यन किया था, डिवेल्युएशन कर दिया था, और उसको लेकर के पूरी दुनिया में एक तरह से हंगामा सा मच गया था, शेयर मार्केट गिरने शुरू हो गए थे, है ना। अब वो मुद्रा के अवमूल्यन से दुनिया के मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्ल्ड ट्रेड पर क्या इंपैक्ट हुआ, वो अब एक इकोनॉमिक्स का अलग टॉपिक है, उसे मैं यहां लेकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा और वक्त भी इस बात की इजाजत नहीं देता, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ये बात कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि उससे पूरी दुनिया एक की जो अर्थव्यवस्था थी उस समय हिल गई थी, और इसके लिए चाइना की आलोचना भी हुई थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको अपना निर्यात बढ़ाना था इसलिए उसने अपनी मुद्रा का जबरदस्त रूप से अवमूल्यन कर दिया। मित्रों, जो दूसरी खबर थी वो यही है कि संत मदर टेरेसा, जो मदर टेरेसा जो है उन्हें संत की उपाधि दी गई है। इस न्यूज़ को सुनते समय और इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ मैं पढ़ी भी, तो दो चीज़ें बिल्कुल मेरे ध्यान में आ गई। एक तो यह है कि मुझे मदर टेरेसा के पांव छूने का अवसर मिला था 1982 में, जब मैं सागर यूनिवर्सिटी में वहाँ की लाइब्रेरी, अपनी पीएचडी के लिए लाइब्रेरी अटेंड करने गया था। तो वहाँ मैंने उनका ऑटोग्राफ भी लिया था, तो मैंने उनके दर्शन किए हैं। और फिर उनको संत की उपाधि वेटिकन सिटी में दी गई, तो वेटिकन भी मेरा देखा हुआ है, वहाँ गया हुआ हूँ और चीज़ों को महसूस किया है। वेटिकन सिटी तो बेसिकली महसूस करने वाली जगह है, तो वो मेरे दिमाग में आ गई। खैर, आप जानते हैं कि मदर टेरेसा को भारत रत्न भी दिया गया और नोबल प्राइज तो उनको पीस का, शांति का नोबल प्राइज तो उनको मिला ही, और उनका जो कार्य क्षेत्र था मूलतः कोलकाता रहा है। तो बहुत ही एक सम्मानित, न केवल सम्मानित महिला रही हैं बल्कि बहुत ही पूज्य भी रही हैं, उनका बड़ा विश्व में ही सम्मान है। और अब तो संत ही हो गई हैं, तो आप कह लीजिए कि वैसे ही पूरी दुनिया के लिए, दुनिया ने स्वीकार किया है कि वो केवल सम्मानित ही नहीं है बल्कि श्रद्धेय भी हैं और पूज्यनीय भी हैं। एक ये खबर थी मित्रों। एक छोटी सी खबर थी, भारत चीन मैत्री पर प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। वहाँ हमारे जब प्राइम मिनिस्टर भी चाइना गए हैं, तो उनकी चाइना के प्राइम राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है और दोनों ने आपस में बातचीत की है। खासकर आपको मालूम है कि जो परमाणु सप्लाई जो ग्रुप था ASG में भारत को सदस्यता मिलनी थी, लेकिन चाइना के कारण वो नहीं मिल पाई। चाइना ने कुछ प्रक्रियाओं की बात उठा दी थी, उस पर हम लोगों ने इससे पहले चर्चा की थी। तो वो एक संदर्भ था जिससे भारत और चाइना के बीच में थोड़ी सी तनाव की स्थिति थी। अब दोनों मिले हैं और दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे को समझने की बात कही है, तो ये केवल एक छोटा सा डेवलपमेंट है, कुछ खास इसमें नहीं है। तो मित्रों, AIR न्यूज़ में तो बस इतना ही है। जहां तक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स का सवाल है, आज न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स कम ही हैं, 4 क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। सामान्य क्लिपिंग्स ही हैं, आप लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिएगा। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि गणेश चतुर्थी भी है और शिक्षक दिवस भी है, तो क्या इनको मिला करके कुछ बात की जा सकती है? फ्रेंड्स, जो शिक्षक है और जो शिष्य है, मुझे लगता है कि जो शिक्षक होता है उसमें एक शिष्य भी होता है, और सच पूछिए तो जो शिष्य होता है उसमें एक शिक्षक भी होता है। ये दोनों चरित्र हर व्यक्ति में एक ही साथ अगल बगल मौजूद रहते हैं। और मैं खासकर मौजूद रहने की बात इसलिए कह रहा हूं, जो मैं मानता हूं वो ये है कि चाहे वो शिष्य हो, शिष्यत्व तो एक भाव है, शरीर नहीं है, इसका आपके कॉलेज और स्कूल जाने से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि जब तक हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं तभी हम स्टूडेंट हैं, शिष्य हैं। सच पूछे तो शिष्यत्व तो वह भाव है जो हमें जिंदगी भर सीखते रहने के लिए प्रेरित करता है, और जो जिंदगी भर सीखता रहेगा वो जिंदगी भर शिष्य ही बना रहेगा। और याद रखिए कि जो जिंदगी भर शिष्य बना रहेगा वो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पका ही नहीं है, तो वो तो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, वो लगातार सीख रहा है। क्योंकि सीखने में जो एक आपको लगातार जो मानसिक ताकत और मानसिक ताजगी मिलती है मित्रों, उसका कोई जवाब नहीं होता। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि ज्यादातर लोग इस सीखने को या शिष्यत्व को एक फॉर्मल एजुकेशन से जोड़कर देखते हैं कि किसी स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तब तक शिष्य हैं, इसके बाद हम कुछ और बन गए, फिर अफसर बन गए या टीचर बन गए, हम खुद ही सिखाने वाले बन गए। वो इनफैक्ट सही मायने में शिष्यत्व और शिक्षकत्व का गुण नहीं है, इसीलिए मैंने भाव जगत की बात ज्यादा कही। मित्रों, ये तो स्कूल की जो पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, सच पूछे तो एक समय के बाद इसको भूल जाने में ही सही शिष्यत्व रहता है। आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि, उनसे पूछा गया था कि ज्ञान के बारे में आप क्या समझते हैं, ज्ञान किसको कहा जाता है? बोले, देखो सीधी सी बात है कि हम सब लोग पढ़ते लिखते रहते हैं दुनिया भर का, स्कूल में कॉलेज में, और पढ़ने लिखने के बाद हम उन सबको भूल जाएं या भूल जाते हैं, और उसमें से भूलने के बाद जो बच जाता है वही ज्ञान है। इसका मतलब है कि शिक्षक या शिष्य के रूप में हम अभी जो पढ़ रहे हैं उनको भूल जाने में ही हित है। मित्रों, लेकिन जिसे हम कहते हैं भूल जाने में हित है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि हम सब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो आप क्या करते हैं? उस खाने को पेट में रखे रहने में हित है? नहीं, उसको पचाने में हित है। तो आइंस्टीन का जो इशारा था वो उसी तरीके से था कि जो कुछ भी हम सीखते हैं उस सीखने में फिर ढेर सारी जो चीजें होती हैं हम अपनी तरफ से शामिल करते हैं, अपने अनुभव, हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ढेर सारी चीजों का कॉकटेल बनाने के बाद फिर जो हमारे पास बचता है वो हमारा होता है और वही हमारा ज्ञान होता है। तो मित्रों, ये जो शिष्य और शिक्षक की जो बात है इसका संबंध पढ़ना और पढ़ाने से नहीं है बल्कि सीखना और सिखाने से है। और जो मैं सिखाने की बात कह रहा हूं वो सिखाना अपने आचरण के द्वारा सिखाने से है, किताब हाथ में लेकर के और उसे पढ़ाने से नहीं है। मित्रों, आप खुद महसूस करेंगे, आप खुद देखिए कि जिससे भी आपने सीखा है उनके सिखाने में सबसे बड़ा योगदान किस चीज का रहा है। आप उनसे सबसे ज्यादा सीखते हैं जिन पर आपका सबसे ज्यादा विश्वास होता है। याद रखिए कि आप उनसे सबसे ज्यादा नहीं सीखते जिनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान तो उनके पास है लेकिन जो आपके अंदर का जो विश्वास है वो विश्वास फिर वो ब्रिज बनता है, वो पुल बनता है, वो सेतु बनता है जो ज्ञान को आप तक पहुंचाता है। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है और यही विश्वास आपके अंदर एक भाव पैदा करता है, एक भावना पैदा करता है, या उसे यूं कह लीजिए कि कम दबाव का क्षेत्र बनाता है। अगर हम मौसम विज्ञान की भाषा में बात करें तो आप न्यूज में सुनते हैं ना मौसम संबंधी खबरों में कि अब फलाने फलाने क्षेत्र में कम दबाव का, उस एरिया में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है तो अब वहां वर्षा होने की संभावना है, यानी कि कम दबाव का क्षेत्र बन गया है तो अब जो पानी से भरे हुए बादल हैं अब उधर ट्रेवल करेंगे और वहां बरसेंगे। तो मित्रों, हमारे अंदर भी जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तभी ज्ञान की बरसात होती है, और ये जो कम दबाव का क्षेत्र है ये विश्वास बनाता है। तो सवाल ये है मित्रों कि एक शिक्षक के प्रति आपका विश्वास बनता किस चीज से है, बस इसको आप सोचिएगा कि कौन सी वो चीज है जो आपके मन में उस शिक्षक के प्रति एक विश्वास पैदा कर देती है। आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ ज्ञान नहीं होता, उसमें उनका अपना आचरण होता है, उनका अपना व्यवहार होता है, पता नहीं ढेर सारी ऐसी कितनी चीजें होती हैं जो मिलकर के आपके अंदर एक विश्वास पैदा कर देता है। और याद रखिए मित्रों, जब ये हो जाता है, जब विश्वास का सेतु तैयार हो जाता है, तो सही मायने में विश्वास करने के बाद आप शिष्य बन जाते हैं, सच्चा शिष्य बन जाते हैं, और विश्वास पैदा कराने के बाद सामने वाला सच्चा शिक्षक बन जाता है। और इनफैक्ट जो मैंने गणेश चतुर्थी की बात कही मित्रों, गणेश जी कहीं ना कहीं इसी तरह का कुछ जो सीखने की जो प्रक्रिया है उस सीखने की प्रक्रिया को सिंबलाइज करते हैं, मतलब प्रतीकात्मक तौर पर बताते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो उनकी छोटी छोटी आंखें हैं वो इस बात को, कंसंट्रेशन को बताती हैं कि कैसे कंसंट्रेट होकर के हमें चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। उनके जो बड़े बड़े कान हैं, सूप की तरह जो कान हैं, वो बताते हैं कि फालतू की चीजों को कैसे हमें सुनना ही नहीं चाहिए, अगर सुन भी लेते हैं तो उसे बाहर ही छोड़ देना चाहिए। जैसे कि जो सूप है, कहते हैं ना कि सूप वो तो सार सार को गही लिए थोथा देई उड़ाए। जब सूप में आप कोई भी अनाज पछाड़ते हैं तो उसमें जो फालतू के जो बेकार का अनाज होता है, जो हल्का अनाज होता है, वो गायब उड़ जाता है और जो सार है वो बच जाता है। तो कान उसके, गणेश जी के कान उसी बात का एक तरीके से प्रतीक है। तो गणेश को आप देखा है, हमारे यहां प्रथम देव माने गए हैं। प्रथम देव काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो अगर वो प्रथम देव हैं और उनके पैर छूना चाह रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कबीर इस दोहे में कहीं ना कहीं प्रथम देव गुरु के ही समकक्ष है। तो यह एक बड़ा एक अद्भुत संयोग है मित्रों कि आज गणेश चतुर्थी भी है और शिक्षक दिवस भी है। तो लेट अस प्रे, हम सब प्रार्थना करें कि हम सब के अंदर शिष्यत्व का जो भाव है वो जन्म आजन्म बना रहे। शिक्षक का भाव नहीं, शिक्षक का भाव नहीं, क्योंकि वो तो दूसरे अपने ढंग से सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। और सच पूछे मित्रों, जिनके अंदर शिष्यत्व का भाव होता है ना, वो ऑटोमेटिक शिक्षक बन जाते हैं। उनको दिखाने की जरूरत नहीं होती, उनको किसी उस तरह से फिर प्रोफेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो लगातार ग्रो करते चले जा रहे हैं। ग्रो करने के कारण उनकी चमक बढ़ती चली जा रही है, वो कभी वृद्ध हो ही नहीं रहे हैं। वो आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए हैं और वो तो एक रोशनी की तरह है कि जितना ज्यादा सीख रहे हैं उतना ही ज्यादा उनके अंदर से बाहर आ रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो ऑटोमेटिक ही वो शिक्षक हो जाते हैं। इसीलिए भले ही दिवस शिक्षक दिवस है, लेकिन हम प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें शिष्य बनने की क्षमता दे, शिष्य बने रहें, यही भावना हमारे अंदर भरो। तो मित्रों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। दोस्तों, बहुत सारे आज ईमेल हैं, तो सबसे पहले तो मैं कुछ कॉमन ईमेल के जवाब देना चाहूंगा। दोस्तों, मुझसे अक्सर स्टूडेंट किताबों के बारे में पूछते हैं कि जनरल स्टडीज की कौन सी किताब पढ़ें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी किताबें पढ़ें। मैं बताना चाहूंगा कि सैद्धांतिक तौर पर मैं किताबों के नाम नहीं बताता हूं, इसलिए क्योंकि हर किताब हर के लिए सही नहीं होती है, वो स्टूडेंट की अपनी जरूरत, अपनी पृष्ठभूमि पर डिपेंड करती है। मित्रों, एक किताब किसी की लिखी हुई जो मेरे लिए बहुत अच्छी हो सकती है, आपके लिए वो फालतू हो सकती है, क्योंकि उस किताब के बारे में मुझे जिस स्तर की जानकारी चाहिए वो मुझे मिल रही है, लेकिन आपकी जानकारी उससे काफी ऊपर हो चुकी है, तो आपके लिए वह किताब बेकार है। तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं किताबों के नाम नहीं बता पाता हूं। इसलिए नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता, इसलिए भी नहीं कि मैं किताबों के नाम जानता नहीं हूं, बल्कि इसलिए कि मैं जो पूछ रहा है उसे नहीं जानता हूं, ना उसकी जरूरत को जान रहा हूं, ना उसके स्तर को जान रहा हूं। मित्रों, ऐसे भी आते हैं कि मैं अपने लैंग्वेज के बारे में फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे किस भाषा में, किस लैंग्वेज में सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। मित्रों, आप मुझे तो कभी कभी सच पूछे तो ये लगता है कि आपको अगर अपनी ही चीज के बारे में फैसला करने में दिक्कत हो रहा है, तो फिर सिविल सर्वेंट बनने के बाद तो आपको दूसरे लोगों के बारे में फैसला करना होगा। लैंग्वेज के बारे में फैसला करना कौन सी दिक्कत की बात है? आप देखिए ना कि आपको किस, आपकी, आपका तालमेल किस लैंग्वेज के साथ ज्यादा अच्छा बैठता है, किस पर आपकी ज्यादा कमांड है, दैट्स ऑल, खत्म। आपके दिमाग में अगर ये हो कि कोई लैंग्वेज विशेष लेकर के कोई सिविल सर्वेंट बन जाएगा या बन जाता है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप फिर गलत धारणा लेकर के चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मित्रों, कभी कभी मेरे पास ये भी आता है कि आपने ये आर्टिकल डाला है और इस आर्टिकल में तो इस तरह के विचार हैं, ये सिविल सर्विस के लिए कितना जरूरी है, क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको साफ कर दूं कि जो भी मैं आर्टिकल प्रोवाइड करता हूं उसमें मेरी सहमति असहमति का कोई अर्थ नहीं होता है, वो केवल एक लेखक के अपने विचार हैं। लेकिन मैं इस तरह से छटनी नहीं करता कि ये, चूंकि मैं इसके विचार से सहमत हूं तो मैं वही आर्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, नॉट एट ऑल। और जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन है मित्रों, वह इसी तरह की होती है कि आप चारों तरफ के विचार लीजिए, मतलब इस रूप में आप डेमोक्रेट बनिए कि हर एक ही टॉपिक पर 10 लोग के विचार हैं, 5 लोगों के विचार हैं, 2 लोगों के बिल्कुल कट्टर विरोधी विचार हैं, कोई बात नहीं, आप लीजिए, आप पढ़िए और आप उन पर विचार कीजिए, उन पर सोचिए, क्योंकि वो भी एक विचार है। तो आप थोड़े से इस मायरे में लिबरल बनिए, क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे लिबरल माइंड की अपेक्षा है, एक डेमोक्रेट माइंड आपका होना चाहिए, राइट। तो मित्रों, ये कुछ मेल के जवाब थे। अब मैं मेल पर आता हूं। तो सबसे पहले तो मैं प्रीति बंसोड़ को बधाई देना चाहूंगा कि वो उनको वहां के प्रिंसिपल ने सम्मानित किया है, दुर्ग की है छत्तीसगढ़ की, और उन्होंने मुझे एक सुझाव भी दिया है कि सर, जिस तरह से आपने किताब लिखी है पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, उसी तरह से आप बेहतर होगा कि किताब लिखे पढ़ाओ तो ऐसे पढ़ाओ। प्रीति, इस बारे में मैं बहुत समय से सोच रहा हूं, लेकिन और मुझे लगता है, सच बताऊं कि मैं इस पर किताब लिख भी सकता हूं और ये मेरे दिल के बहुत करीबी विषय भी है और मेरे उस एजेंडा में है भी। जब भी समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके इस आदेश का पालन करूं। इस इच्छा, यह इच्छा जाहिर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे पास मेल आया है मित्रों, रमेश कुमार चौरसिया का, जो बेतिया बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि डेली ऑडियो गाइडेंस वो काफी लोगों को बता चुके हैं, किताबों के बारे में भी उन्होंने जानना चाहा कि कहाँ मिलेंगी। तो एक तो डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में लोगों को बताने के लिए रमेश बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप में से बहुत और भी स्टूडेंट इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस काम को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक मेरी किताबों का सवाल है, देखिए आप उसमें नंबर दिया हुआ होता है, मेरी अगर एक भी किताब आपके पास है तो आप सीधे पब्लिशर से बात कर सकते हैं। बड़े शहरों में तो ये किताबें अवेलेबल हैं ही, रेलवे स्टेशन पर भी मिल जाती हैं, नहीं तो ऑनलाइन amazon.com पर सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप वहां से भी मंगा सकते हैं। तो मित्रों, अब मैं सभी अपने ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इनमें से कुछ दोस्तों के नाम ले रहा हूं। राहुल राज, प्रदीप सिंह मीना, अशफाक खान सवाई माधोपुर राजस्थान से, हेतराम प्रजापत जयपुर से, सुषमा कोथे, दिचेन लाडोल लद्दाख से, और दिचेन ने शुरू में जो गुड मॉर्निंग कहते हैं उसमें लद्दाखी शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने लिखा है कि लद्दाख में इसका मतलब नमस्कार करना होता है। तो दिचेन, एक दो शब्द नए देने के लिए मैं आपको स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ज्ञानेश्वर सुधाकर मोरे जलगांव महाराष्ट्र से, कुमार राम, संजय कुमार रावत, रोहित गुप्ता रक्सौल बिहार से, साहिल सहगल जलंधर से, शेष नारायण, अजीत सिंह बेगूसराय बिहार से, अभिनव मिश्रा, प्रांजलि राज मिश्रा, अर्जुन सूर्यवंशम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, रजनी शुक्ला इलाहाबाद से, अभिषेक जायसवाल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, और ओम विश्नोई बाड़मेर राजस्थान से। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यही समाप्त होता है। आप सबकी अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।